नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत दुनिया में जीवंत लोकतंत्र का उदाहरण बन गया है और जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने लोकसभा को बताया, रूसी सेना में भर्ती किए गए 91 भारतीय नागरिकों में से 14 को छुट्टी दे दी गई है। भाजपा सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में क्रीमीलेयर व्यवस्था पर सर्वोच्च न्यायालय के सुझाव के संबंध में ज्ञापन सौंपा। सर्वोच्च न्यायालय ने आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया को जमानत दी और पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक के लिए अमन सहरावत का मुकाबला प्यूर्टो रिको के डेरियन क्रूज से होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज ऑकलैंड में आयोजित एक सामुदायिक स्वागत समारोह में भारतीय प्रवासियों को संबोधित किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि भारत दुनिया में जीवंत लोकतंत्र का उदाहरण बन गया है और जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। स्वागत समारोह में भारत सरकार के राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन, लोकसभा सांसद जुगल किशोर शर्मा, सौमित्र खान, उच्चायुक्त नीता भूषण और बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासियों ने भाग लिया।
प्रवासी भारतीयों को अपने संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि न्यूजीलैंड के पास भारत के विकास में खासकर शिक्षा के क्षेत्र में योगदान करने की विशेषज्ञता और अनुभव है। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस बात पर खुशी जताई कि न्यूजीलैंड में रहने वाले भारतीय दीपावली, ओणम, होली और पोंगल जैसे त्यौहार खुशी और उल्लास के साथ मनाते हैं। उन्होंने भारतीय त्यौहारों, परम्पराओं और रीति रिवाजों को बरकरार रखने के लिए भारतीय प्रवासियों की सराहना की। वेलिंगटन से साई की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू न्यूजीलैंड की 2 दिन की राजकीय यात्रा पर हैं। कल राष्ट्रपति ने घोषणा की कि भारत अपने राजनयिक संबंधों को न्यूजीलैंड के साथ और सुदृढ़ करने के लिए ऑकलैंड में वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा।
हमने भारत न्यूजीलैंड साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की है, जिसमें भारतीय समुदाय की भी प्रमुख भूमिका है। मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि हम जल्द ही ऑकलैंड में एक कॉन्सुलेट खुलेंगे। इसका उद्देश्य यहाँ बसे हमारे प्रवासी भारतीयों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करना है। मुझे विश्वास है कि ये न्यूजीलैंड के साथ हमारे डिप्लोमेटिक संबंधों को और बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा।
विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज कहा कि रूस की सेना में अब तक 91 भारतीय नागरिकों को भर्ती किए जाने की सूचना मिली है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्न के उत्तर में डॉ जयशंकर ने कहा कि इनमें से 14 लोगों को छुट्टी दे दी गई और दुर्भाग्यवश 8 की मृत्यु हो गई। उन्होंने बताया कि 69 भारतीय नागरिक रूसी सेना से रिहाई का इंतजार कर रहे हैं।
There are 69 Indian citizens who are awaiting release from the Russian army. We take this issue very, very seriously. I have myself raised it numerous times with the Russian foreign minister, and when Prime Minister was in Moscow last month, he raised it personally with President Putin, and he got President Putin's assurance that any Indian national who is in the service of the Russian army will be discharged and released.
डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि रूसी अधिकारियों का कहना है कि इन भारतीय नागरिकों ने रूसी सेना के साथ सेवा के लिए अनुबंध किया था। हालांकि उन्होंने बताया कि कई मामलों में भारतीय नागरिकों को गुमराह किया गया। विदेश मंत्री ने बताया कि इस मामले में सीबीआई ने 19 लोगों और संस्थाओं के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। उन्होंने कहा कि 10 मानव तस्करों के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले हैं। जांच के दौरान 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। दक्षिण पूर्व एशिया में साइबर धोखाधड़ी के लिए लोगों को गुमराह किए जाने पर डॉ जयशंकर ने कहा कि सरकार ने इसे राजनीतिक स्तर पर सभी संबंधित सरकारों के समक्ष उठाया है। अब तक कंबोडिया से 650, म्यांमार से 450 और लाओस से 548 भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाया गया है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर सरकार काफी सतर्क है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे संशोधन विधेयक 2024 आज लोकसभा में पेश किया। विधेयक में रेलवे अधिनियम 1989 में संशोधन का प्रावधान है। विधेयक पेश करते हुए रेल मंत्री ने कहा कि इस विधेयक से रेलवे बोर्ड की शक्ति बढ़ेगी और रेलवे की दक्षता में सुधार होगा। समुद्री माल ढुलाई विधेयक आज लोकसभा में पेश किया गया। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य समुद्री मार्ग से माल ढुलाई के संबंध में मालवाहकों से जुड़ी जिम्मेदारियों, देनदारियों, अधिकारों को संबल प्रदान करना है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के भाजपा सांसदों ने आज संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। इन सांसदों ने संयुक्त रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण में क्रीमी लेयर व्यवस्था पर सर्वोच्च न्यायालय के सुझावों के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए भाजपा सांसद भोला सिंह ने कहा कि उनकी मांग है कि इस फैसले को लागू नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है कि यह सिर्फ शीर्ष न्यायालय का एक सुझाव है। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से मालदीव की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों को मजबूत करना और द्विपक्षीय संबंधों को और प्रगाढ़ करने के लिए नए अवसर तलाशना है। यह यात्रा इस वर्ष जून में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के लिए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जो की भारत यात्रा के बाद हो रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonyayar.gov.in और हमारे न्यूज ऑन यायर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
अजी सुनती हो, आशा दीदी से क्या बात हुई?
उन्होंने मुन्नी को दस्त से बचाने का उपाय बताया।
क्या बताया?
6 महीने तक उसे सिर्फ माँ का दूध पिलाना है। 6 महीने बाद उम्र के अनुसार संपूर्ण पौष्टिक आहार खिलाना है। 5 साल तक हर 6 महीने में विटामिन ए पिलाना और याद से रोटा वायरस और खसरा का टीका सही समय पर लगवाना है।
बहुत बढ़िया, दस्त के विरुद्ध हम है तैयार, क्योंकि साथ है
रक्षा, रोकथाम और उपचार।
अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति अनियमितता मामले में जमानत दे दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मनीष सिसोदिया पिछले 17 महीनों से हिरासत में थे और अभी तक जांच पूरी नहीं हुई है। न्यायालय ने कहा कि मनीष सिसोदिया तेजी से जांच के अधिकार से वंचित हो रहे हैं। शीर्ष न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय अन्वेषण जांच ब्यूरो दोनों के मामलों में जमानत दी है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने मनीष सिसोदिया को दी गई जमानत की सराहना की है। दिल्ली के मंत्री आतिशी ने इसे सच्चाई और दिल्ली के लोगों की जीत बताया है। आम आदमी पार्टी ने अपने नेता मनीष सिसोदिया को दी गई जमानत का स्वागत किया है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में पार्टी नेता संजय सिंह ने कहा कि यह फैसला देश की न्यायिक व्यवस्था और लोकतंत्र की जीत है। इस बीच भाजपा ने श्री सिसोदिया के लिए कहा है कि वे अब भी एक आरोपी हैं। दिल्ली के लोगों को धोखा देने के लिए अदालत में श्री सिसोदिया की जवाबदेही बनती है। भाजपा की सांसद बांसुरी स्वराज ने मीडिया को बताया कि श्री सिसोदिया 17 से 18 महीनों तक जेल में थे। जांच में हुई देरी के आधार पर उन्हें जमानत दी गई है।
कि जब 17 महीने कैद में हो जाते हैं तो बेल मिलना बहुत स्वाभाविक बात है। इसका अर्थ कतई ही नहीं है कि वो अपराध मुक्त हैं। दिल्ली की जनता के साथ आम आदमी पार्टी की नेतृत्व ने, खुद माननीय मनीष सिसोदिया जी ने, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने घोटाले पे घोटाला करा है, विश्वासघात पर विश्वासघात करा है। शराब घोटाला तो एक लंबी श्रृंखला का केवल एक अंग है।
देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए देश में हर घर तिरंगा अभियान आज से 15 अगस्त तक चलाया जाएगा। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे घर पर तिरंगा फहराएं और तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करें। इस दौरान देशभर में 200 से अधिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और 13 अगस्त को संसद सदस्य तथा मंत्री तिरंगा बाइक रैली निकालेंगे। हर घर तिरंगा अभियान वर्ष 2022 में शुरू किया गया था।
हर घर तिरंगा अभियान तिरंगे की शान में एक यूनिक फेस्टिवल बन चुका है।
और एक बार फिर देश हर घर तिरंगा अभियान के साथ आजादी का उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाने जा रहा है। तो चलिए इस 9 से 15 अगस्त हम सब हर घर तिरंगा अभियान में उत्साह और उमंग के साथ जुड़े और इस अभियान में होने वाली तिरंगा यात्राओं, मेलों, रैलियों और मैराथन जैसे कार्यक्रमों में भाग लें। अपने घर पर तिरंगा फहराएं और अपनी सेल्फी को harghartiranga.com पर अपलोड करें।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वाधीनता दिवस से पहले अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपने प्रोफाइल फोटो तिरंगे में बदल ली। श्री मोदी ने एक संदेश में लोगों को हर घर तिरंगा अभियान को एक बार फिर यादगार जन आंदोलन बनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। उन्होंने हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपनी सेल्फी साझा कर स्वाधीनता का जश्न मनाने का आग्रह किया है। राष्ट्रव्यापी हर घर तिरंगा अभियान के हिस्से के रूप में भाजपा 11 से 13 अगस्त तक प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में तिरंगा यात्रा कार्यक्रम का आयोजन करेगी। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने एक वक्तव्य में बताया कि 12 से 14 अगस्त तक सभी स्वाधीनता सेनानियों और देश के सभी युद्ध स्मारकों पर पुष्पचक्र और पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलन में भाग लेने वाले सेनानियों को श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने भारत छोड़ो आंदोलन को स्वाधीनता संग्राम में एक महत्वपूर्ण क्षण बताया है। इस अवसर पर एक वीडियो संदेश में अपने विचार साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि औपनिवेशिक शासन से स्वाधीनता के लिए भारत के संघर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका है।
इसी आंदोलन ने ब्रिटिश राज से मुक्ति के लिए पूरे देश को संकल्पित कर दिया। ये वो समय था जब अंग्रेजी सत्ता के विरोध में भारतीय जनमानस गांव हो, शहर हो, पढ़े हो, अनपढ़ हो, गरीब हो, अमीर हो, कंधे से कंधा मिला करके भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा बन गया। इसी से प्रेरित होकर आज पूरा देश हर बुराई के लिए कह रहा है क्विट इंडिया। चारों तरफ एक ही गूंज है, करप्शन क्विट इंडिया, डायनेस्टी क्विट इंडिया, अपीजमेंट क्विट इंडिया।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ के अवसर पर महात्मा गांधी और स्वाधीनता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
भारत छोड़ो आंदोलन हमारे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में सबसे निर्णायक क्षणों में से एक था। इस आंदोलन में देश का प्रत्येक व्यक्ति, युवा, महिलाएं तथा हर वर्ग के लोगों ने एकजुट होकर भागीदारी की तथा अन्याय तथा अत्याचार की शक्तियों के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध की शक्ति को रेखांकित किया। इस अवसर पर हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सभी अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी उत्सव का उद्घाटन किया। ये उत्सव पूरे वर्ष मनाया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्सव का उद्देश्य स्वाधीनता सेनानियों के शौर्य और काकोरी की वीर गाथा के माध्यम से वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरित करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पेरिस ओलंपिक में आज भारतीय एथलीट कुश्ती, एथलेटिक्स और गोल्फ में चुनौती पेश करेंगे। अमन सहरावत पुरुषों की 57 किलोग्राम भार वर्ग की फ्रीस्टाइल कुश्ती स्पर्धा में कांस्य पदक के लिए प्यूर्टोरिको के जेरेन क्रूज से भिड़ेंगे। भारतीय समय के अनुसार यह मुकाबला रात 9:45 पर शुरू होगा। एथलेटिक्स में भारत की पुरुष और महिला खिलाड़ियों की 4x400 रिले टीमें चुनौती पेश करेंगी। पुरुषों की 4x400 रिले टीम दोपहर बाद 2:35 पर हीट 2 में भाग लेगी। भारतीय गोल्फर अदिति अशोक और दीक्षा डागर पेरिस ओलंपिक की महिला गोल्फ स्पर्धा में दूसरे राउंड के बाद 60 प्लेयर फील्ड में 14वें स्थान पर रहीं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा भारत दुनिया में जीवंत लोकतंत्र का उदाहरण बन गया है और जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने लोकसभा को बताया रूसी सेना में भर्ती किए गए 91 भारतीय नागरिकों में से 14 को छुट्टी दे दी गई है। भाजपा सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर व्यवस्था पर सर्वोच्च न्यायालय के सुझाव के संबंध में ज्ञापन सौंपा। सर्वोच्च न्यायालय ने आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया को जमानत दी और पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक के लिए अमन सहरावत का मुकाबला प्यूर्टोरिको के डेरेन क्रूज से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।